તારીખ 27/9/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 239 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 182
145 પ્રશ્ન 239 साधक की भूमिका में सुहराग आए उसे साधक ही रूप जानता है, ये बराबर है। साधक मैंने सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी, उसको अपना स्वरूप का उपाधि बना है, शुभाशुभ भाव जो विभाव है उसका हेय बना है। स्वरूप की उपाधिता के कारण से उसको तो हेय बना आता है, परंतु जिज्ञासु की भूमिका में, जिज्ञासु मैंने मुमुक्षु की भूमिका में आप कहते हैं उसी तरह अंदर में अंतर में नायक और बाहर में देव शास्त्र गुरु दोनों रहते हैं। जिज्ञासु को भी अंदर में अपना नायक की मुख्यता और बाहर में देव गुरु शास्त्र दोनों रहता है, परंतु हमको ऐसा लगता है, ये प्रश्नकार का जो लगता है वो बात बताते हैं, परंतु हमको ऐसा लगता है कि यदि देव गुरु को साथ में रखते हैं तो अनादि का जीव का जो व्यवहार का पक्ष है उसकी रुचि है, इसलिए व्यवहार की रुचि हो जाने की शक्यता क्या नहीं है। प्रश्न सहज परिस्थिति को नहीं समझते हुए उठा है, मुमुक्षु की सहज परिस्थिति कैसे होती है वो मालूम नहीं है, और व्यवहार निश्चय की बातें सुन ली है, उसमें ऐसा सुना है कि व्यवहार का पक्ष छोड़ देना चाहिए, वो अनादि का है, और व्यवहार का पक्ष में देव गुरु शास्त्र और तत्व ज्ञान के भंग भेद, गुण भेद, पर्याय भेद, ये सब प्रकार आता है। अब मुमुक्षु है, अकेला निश्चय के प्रति ढलेगा तो क्या निश्चय भाष नहीं होगा, तो प्रश्न क्यों नहीं उठा। अगर वो देव गुरु शास्त्र को नहीं रखेगा और अकेला निश्चय का विचार चलेगा तो क्या निश्चय भाष में नहीं आ जाएगा, तो वो भय तो लगता नहीं है। व्यवहार का पक्ष का दहशत भय लगा है, निश्चय का पक्ष का नहीं लगा है, दोनों पक्ष पक्ष तो पक्ष ही है। और यथार्थ रूप से तो पक्ष आता है तो भी पक्ष निश्चय का आता है तो छूट जाता है, इसलिए पक्ष में खड़े रहने की बात तो कहीं भी है ही नहीं। ये प्रश्न तो मुमुक्षु की सहज भूमिका भी कैसी होती है, यथार्थ भूमिका कैसी होती है सहज रूप से, उस भूमिका में आए बिना जो बात समझ में आई उसकी कल्पना में लग गया, तर्क में चढ़ गया उल्टा सुलटा, तो उसमें से प्रश्न उठा है। अब ज्ञानी है वो तो ऐसे ही समाधान देकर भी तो सहज ऐसा होता है, करने का सवाल नहीं है, सहज ऐसा होता है, हुए बिना रहता नहीं है, वो बात है। मुमुक्षु को, साधक को अपनी भूमिका मैंने स्वस्थान का राग प्रशस्त और स्वस्थान का देश प्रशस्त, वो दोनों प्रशस्त आए बिना नहीं रहता, करने का सवाल नहीं है और करने का उपदेश भी नहीं है। रागवेश करने का वितराग का उपदेश नहीं है, वितराग का उपदेश तो वितराग होने का ही होता है, लेकिन ज्ञान कराते हैं कि देखो वितरागता की अभिलाषा है या वितरागता आंशिक उत्पन्न हुई है। मुमुक्षु को अभिलाषा है और ज्ञानी को अंश रूप से उत्पन्न हुई है। दोनों को राग तो है, तो प्रशस्त राग कैसा आएगा उसका ज्ञान कराया है, और प्रशस्त द्वेष आएगा तो कैसा आएगा उसका भी ज्ञान कराया है। अगर स्वस्थान के अपने स्थान का राग द्वेष नहीं होता है तो अस्थान का राग द्वेष आ जाएगा, तो भूमिका का नाश हो जाएगा। इसलिए ज्ञान कराते हैं कि ऐसा ऐसा राग द्वेष का प्रकार बनता है, अगर वो नहीं है अपने स्थान में तो वो भूमिका का नाश हो जाएगा। ये बात है, समाधान। रुचि वाला जीव को, किसकी रुचि? आत्मकल्याण की रुचि, स्वरूप की रुचि है वो। ऐसे जीव को, मुमुक्षु जीव को देव शास्त्र गुरु बीच में आए बिना रहते नहीं है, सहज है वो, आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि उपयोग तो बाहर जाता है, उपयोग तो अंदर में है नहीं, तो बाहर में कहाँ जाएगा। इसका विवेक रुचि वाले को होता ही है, क्यों कि रुचि से ज्ञान में उतना फर्क हो गया, ज्ञान विवेक पूर्ण प्रवृत्ति करता है।
ज्ञानी का भी उपयोग बनाया रहता है तो यही पर आता है,
ज्ञानी ने आवे छे पण ज्ञानी ने शू छे के हे पण आवे छे, प्रश्न शू छे ज्ञानी ने हे पण छे,
बराबर,
પણ મુમુક્ષુને હજી હે પણ ન થયું હોય તો ઉપાદેયતા થઈ જાય ને, એમ કે છે એવું જરૂરી નથી, ઉપાદેયતા થઈ જાય એવું જરૂરી નથી।
જ્ઞાન દશાની સહજ સ્થિતિ કેવી હોય એ સમજણા બરાબર નથી પ્રશ્નમાં,
જ્ઞાની નું દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે પોતે પ્રશ્નકારે, કે એમને એ પણ આવ્યું છે એટલે વાંધો ન આવે, અમને એ પણ આવ્યું નથી તો અમને પક્ષ દ્રઢ થઈ જશે, તો જિજ્ઞાસુ ની ભૂમિકા યથાર્થ નથી એમ કે છે। જ્ઞાની ની દશા તો તું ઓળખી સવાલ રહેતો નથી, તો તે ગોખી નાખ્યું છે કે ઉગે ઉગે સમજી લીધું છે બૌદ્ધિક સ્તર પર એમ કે જેની જિજ્ઞાસુ ની મોક્ષુ ની ભૂમિકા ની ખબર ન હોય એને જ્ઞાન દશા ની ખબર ક્યાંથી હોય, એમ વાત છે। જિજ્ઞાસુ ને રુચિ વાળાને કેવા ભાવ આવે છે? મુજે મેરા સ્વરૂપ કૈસે પહેચાન મેં આ જાય, ગુરુ મુજે ક્યા માર્ગ બતાતે હૈ, ગુરુ ને ક્યા કહા હૈ, એસે વિચાર ઉસકો આયે બિના રહેતે નહીં હૈ. ક્યા મેરે સ્વરૂપ કી પહેચાન મુજે કૈસે હો, વો એક બાત આતી હૈ. વિશુભ ભાવ હૈ, આયે બિના રહેગા ઓર મેરા આત્મકલ્યાણ કા ઉપાય માર્ગ માને ઉપાય, શ્રી ગુરુ મુજે ક્યા બતાતે હૈ, કૈસે મેરા આત્મકલ્યાણ હો, વો બાત ભી ઉસકો સુનને કે કાલ મેં આયે બિના રહેગી નહીં. ઓર ગુરુ ને ક્યા કહા હૈ, વો બાત ગુરુ કી આજ્ઞા સમજ કરકે વો વિસ્મરણ હોને દેતા નહીં હૈ. એસે વિચાર ઉસે આયે બિના રહેગા નહીં, પરંતુ એસા વિચાર આતા હૈ ઇસલિયે ઉસકો વ્યવહાર કા પક્ષ આ જાતા હૈ, એસી બાત હૈ. ક્યું કે ઉસકા લક્ષ્ય હૈ વો વિચાર પર શુભ ભાવ પર નહીં હૈ. ઉસકો જો સ્વરૂપ કી પહેચાન કરની હૈ, સ્વરૂપ કા ધ્યેય હૈ, સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ કા, વો કારણ સે યે વિચાર ચલતે હૈ. એસી બાત હૈ, ઇસલિયે ઉસકો વ્યવહાર કા પક્ષ હો જાય આ જાય એસા નહીં હૈ. ઉસે ભાવના રહેતી હૈ, ઇસલિયે ભક્તિ આયે બિના રહેતી નહીં. જો ભાવના વાલા હૈ, ભાવના મને આત્મકલ્યાણ કી ભાવના, ઉસકો અપને આત્મકલ્યાણ કો બતાને વાલે કે પ્રતિ ભક્તિ બહુમાન આયે બિના રહેગા નહીં, બની નહીં સકતા. લૌકિક મેં ભી કોઈ અપની કઠિનાઈ કો દૂર કરતા હૈ, કે ભાઈ આપકો તકલીફ હૈ, ચલો હમ હમારે પાસ યે વ્યવસ્થા હૈ, આપકી તકલીફ દૂર કર દેતે હૈ, આપકો જરૂરત હૈ, આપકો જરૂરત કી પૂર્તિ કર દેતે હૈ, તો ઇસકે પ્રતિ उसके प्रति कम से कम आभार के तो भाव आये बिने रहता नहीं. लौकिक उपकार में भी उपकार बुद्धि हुए बिना सज्जन को तो नहीं रहती. किसी को नहीं आती है वो तो सज्जनता नहीं तो नहीं आती है, लेकिन आये बिना रहती नहीं. तो ये पारमार्थिक पारलौकिक उपकार जो होता है उसके प्रति उपकार बुद्धि नहीं आए, ये बात कैसे बन सकती है? तो उसको भक्ति आए बिना रहती नहीं है, ये नियमित बात है, सहज है वो. गुरु ऐसा कहते हैं कि तू तेरे शुद्धात्मा को पहचान. गुरु क्या कहते हैं? तुम अपने शुद्धात्मा को पहचानो. तो गुरु कोई ऐसा नहीं कहते कि मेरे को ये जरूरत है, तुम मेरी जरूरत की पूर्ति करो, मेरे को ये अपेक्षा है, मेरी अपेक्षा तुम क्यों नहीं मेरी अपेक्षा को समझता है, ऐसा कोई गुरु कहते नहीं है. वो तो ऐसा ही कहेगा कि देखो प्रत्येक आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, तुम्हारे में भी है, तुम उसको पहचानो. तुम्हारे स्वरूप को तुम पहचानोगे तो अपना परमेश्वर पद को पहचानने से तुमको सब अपेक्षा वृत्ति छूट जाएगी, जैसे हमको छूट गई है. हमको क्या छूट गई? कि हमने हमारे परमेश्वर पद को पहचाना है, अनुभव किया है, तो हमको कहीं अपेक्षा वृत्ति नहीं होती. अब तुम भी पहचानो हमारी तरह, बात खत्म। गुरु कहते हैं कि तू तेरे शुद्धात्मा को पहचान, सभी शुभभाव से तेरा आत्मा भिन्न है, सभी शुभभाव से तेरा आत्मा बिल्कुल भिन्न है, किसी भी प्रकार के शुभभाव हो मूल स्वरूप इससे भिन्न है, जाति भेद है। फिर भी जिज्ञासु को शुभ भाव आए बिना रहता नहीं, जिज्ञासु को क्या ज्ञानी को भी आए बिना रहता नहीं, वो हे समझते हैं तो भी आए बिना नहीं रहता, तो तुमको तो उतना ही पना आया नहीं, तुमको आए बिना कैसे रहेगा। अगर शुभ नहीं आएगा और शुद्धता उत्पन्न हुई नहीं तो कहाँ जाएगा तुम, अशुभ में चला जाएगा अनिवार्य रूप से। और कोई चाहे कोई नहीं चाहे, शुभ और अशुभ दोनों हुए बिना रहता, निगोद से लेकर के संगनी पंचेंद्रिय तक कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता हुआ ही करती है, निगोद जीव को भी और मनुष्य को भी। किसी को अकेला तीव्र कषाय रहे अशुभ, और किसी को अकेला शुभ भाव मंद कषाय रहे, ये संभव है ही नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा नहीं है, कषाय का स्वभाव ऐसा है ही नहीं। उसको बुखार की उपमा दी है, ता शास्त्र में समय सार में इसको किसकी उपमा दी है, बुखार के, कि बुखार जब नापो थोड़ा आगे पीछे आएगा, उसका डिग्री एक सी नहीं रहती, ऐसे कसाई की डिग्री एक सी रहती नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है, तीव्र मन तीव्र मन तीव्र मन तीव्र मन हुआ ही करता है। और अपने अनुभव से देख लो, बिना विकल्प भी मंद करूं ऐसा विकल्प नहीं आएगा, मंद हो जाएगा, तीव्र करो ऐसा विकल्प आए बिना तीव्र हो जाएगा, ये करो करो वाली बात तो मिथ्या है, सहज होता है, जो होता है वो सहज होता ही है, तुमको करना फरने की जरूरत है ही नहीं। क्या कहा, श्री गुरु ऐसा कहते हैं कि तू तेरे शुद्धात्मा को पहचान और सभी प्रकार के स्वभाव से तेरा आत्मा भिन्न ही भिन्न है, अलग ही अलग है, फिर भी जिज्ञासु को स्वभाव आए बिना रहता नहीं। जो लोग दूर बैठे हैं इस विषय के समझने के समीप नहीं आए हैं वो तो ऐसा मान लेता है कि आप लोगों को सोनगढ़ में ऐसा समझाया जाता है कि स्वभाव मत करो, स्वभाव मत करो, ऐसा समझाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि तुमको आए बिना रहने वाला है ही नहीं, मुमुक्षु हो तो भी, गैर मुमुक्षु हो तो भी, और ज्ञानी हो तो भी, छठवें गुण स्थान तक जहाँ तक सविकल्प दिशा है, फिर सात से ऊपर का तो निर्विकल्प है, शुभ भाव आए बिना रहता नहीं, और पांच में मध्यम तक अशुभ भी आए बिना रहता नहीं, फिर उत्कृष्ट पांचवा से लेकर के फिर ऊपर में अशुभ भाव आता नहीं है, कुछ छूट जाता है। आए बिना रहता नहीं, परंतु उसमें व्यवहार का पक्ष आ जाता है, सो बात है, पक्ष में अभिप्राय साथ है, क्या है पक्ष वाले को अभिप्राय का साथ है, ज्ञानी का तो अभिप्राय है, पर मुमुक्षु के मुमुक्षु को भी जो सही यथार्थ भूमिका में है उसको राग करने का अभिप्राय नहीं है। मुमुक्षु वो है जो वितराग होने के प्रयास में लगा है, बीच में आ जाता है वो अलग बात है, वो वितराग होने के प्रयास में लगा है, रागी होने के प्रयास में नहीं लगा है, इसलिए उसको भी पक्ष होने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसका अभिप्राय मिट गया है, शुभभाव करने का अभिप्राय मिट गया है। ऐसा भक्ति बहुत करता है तो भ्रम हो जाता है कि इतनी भक्ति करता है तो उसको पक्ष अवश्य होगा होगा, और यानी भक्ति करता है तो अभिप्राय पूर्वक करता है, ऐसा नहीं लेते हैं
है?
तो वो अभिप्राय का विषय जो नहीं समझते हैं उनको ये गड़बड़ होती है। अपने यहाँ तो अभिप्राय की बात मुख्य तौर से समझी समझाई जाती है। अभिप्राय क्या है, जैसे आप दोष का निवेदन शाम को करते हैं, देखो आज हमारे ऐसे परिणाम हुए हैं, तो वो कहते हैं कि अभिप्राय सहित बताओ आपको जो परिणाम चले इसके पीछे आपका अभिप्राय क्या था, क्या सुख बुद्धि का था, क्या कर्ता बुद्धि का था, क्या बात थी, अपने तो बुद्धि का था, जैसे घर में कुछ हुआ परिणाम ठीक नहीं रहे, क्यों, अपनत्व की बुद्धि है इसलिए, अगर अपनत्व की बुद्धि नहीं है तो उपेक्षा आ जाएगी, चलो उसके वो जाने, हमको क्या लेना देना है उसके वो जाने, जाओ छोड़ दिया बात को, सुनी हम सुनी कर लेते हैं खत्म। क्या कहते हैं कि शुभ भाव आए बिना रहते नहीं, इसलिए पक्ष आ जाए वो बात नहीं है। वह जीव व्यवहार से लाभ माने उसमें सर्वस्व माने, लाभ माने और कर्तव्य माने, सर्वस्व माने, यही मेरा स्वरूप है, मैं ऐसा ही हूँ, शुभ भाव में करने वाला ही हूँ, ऐसा उससे मुझे मोक्ष मिलेगा, इस भाव करते करते मेरा आत्म कल्याण पूरा हो जाएगा, अभी भी हो रहा है और आगे जा करके पूरा मोक्ष हो जाएगा, पूरा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष माने पूरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा माने तो उसमें व्यवहार का पक्ष आता है, इसी मान्यता में व्यवहार का पक्ष आता है, बाकी जो शुभ भाव आता है उसमें व्यवहार का पक्ष आता नहीं है, क्योंकि विचार में अभिप्राय में हमको शुद्धता प्राप्त करनी है, पूर्ण शुद्ध होनी है, पूर्ण शुद्धता वही हमारा ध्येय है, वो बात लक्ष्य में है, शुद्धि का ध्येय है, पूर्ण शुद्धि का ध्येय है, इसलिए अभिप्राय नहीं है, शुभ भाव करने का अभिप्राय है ही नहीं, जो ध्येय निश्चित किया है उसी का अभिप्राय है। शुभ भाव आते हैं उसके साथ जिज्ञासु को ऐसी श्रद्धा नहीं हो जाती कि यह शुभ भाव से मुझे लाभ है, क्या शुभ भाव आते हैं लेकिन श्रद्धा ऐसी हो जाए वो कोई जरूरी बात नहीं है, मुमुक्षु को भी जरूरी नहीं है, ज्ञानी को तो है ही नहीं, मुमुक्षु को भी वो बात जरूरी नहीं है, अगर ऐसा होता तो किसी को सम्यक श्रद्धा होती नहीं, स्वरूप की श्रद्धा ही नहीं होती उसको, किसी को भी वो बात शुभ भाव आने से पक्ष हो जाता है या अभिप्राय बन जाता है, ऐसी बात है। गुरुदेव शुभ भाव का निषेध बहुत करते थे, क्या कहते थे, जहर है, क्या कहते हैं, मीठा मीठा जहर कहते थे। यहाँ तक तीर्थंकर प्रकृति भी जहर के झाड़ है, झाड़ मैंने पेड़ है, जहर के पेड़ है, वो भी वांछा करने लायक है। देखिए दिगंबर संप्रदाय में क्या हो गया, आएंगे दस लक्षण पर, सोलह कारण भावना की पूजा करेंगे, सोलह का सोलह कारण भाव, सोलह तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जयनाथ परम गुरु। वांछा करने से वो ऐसे तो तीर्थंकर पद होता ही नहीं है, सोल कारण की भावना भाए तो तीर्थंकर पद आ जाए ऐसा नहीं जो वास्तव में तो तीर्थंकर प्रकृति ज्ञानी की भूमिका में बंद होता है, अज्ञान दशा में इसका बंद होता ही नहीं। तीर्थंकर द्रव्य को भी अनादि अनंत द्रव्य की जो योग्यता है विश्व में अनंत जीव है, इसमें कुछ एक जीव को, कितने एक जीव को तीर्थंकर बनने की योग्यता होती है, उसको कहते हैं द्रव्य तीर्थंकर। क्या कहते हैं? द्रव्य तीर्थंकर। अभी अज्ञान में हो, अभी तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ, तीर्थंकर द्रव्य उसको बोलने में तो उसको सोल कारण का भाव निषेध पूर्वक आता है, उपाधिता पूर्वक आता, और उपाधेयता पूर्वक जो करता है उसको बात की समझ भी नहीं है कि ध्येय क्या होता है। बहुत जोर जोर से चलता है सोल अवतार भावना भाव सोल तीर्थंकर पद, ऐसा नहीं होता। गुरुदेव के विषय में सिमंदर भगवान के समूह शरण में जो कुंद कुंद आचार्य वहाँ पधारे थे तब बात निकले थी कि ये जो आचार्य है वो मूल मार्ग का प्रकाश करेगा, असली धर्म का प्रकाश करेगा, और वो जो प्रतिपादन करेगा उसका प्रचार ये जो राजकुमार है वो दूसरे भूमि में करेगा, और ये राजकुमार तीर्थंकर द्रव्य है आगे जाके तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करेगा। तो उस वक्त गुरुदेव को सम्यक ज्ञान नहीं था, अज्ञान दशा में थे, पर यहाँ सम्यक ज्ञान हुआ और उतना प्रचार प्रसार किया तो भी यहाँ तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधते, नहीं बांधी है, अभी आगे जाके बांधने वाले हैं, इसका भी कुछ व्यवस्था है। लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का बंधन हुए ऐसा मुमुक्षु भी चाहेगा, जो यथार्थ मुमुक्षु है वो चाहेगा, ज्ञानी को, ज्ञानी का तो बात ही छोड़ो, वो तो चाहते है ही नहीं। इसलिए कहते वो जहर के पेड़ है, इसका फल हम खाना खाना चाहते हैं नहीं, फिर भी बंद होता है और उसका फल आता है, लेकिन वो वितराग हो जाते हैं। जब फल आता है तब वो वितराग, पूर्ण वितराग हो जाते हैं। तो फल क्या आया? तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ, और विकल्प किसको आया? इंद्र को आया। भगवान को विकल्प नहीं आया समोसन बनाने का, और भगवान को विकल्प नहीं आया दिव्य ध्वनि से उपदेश देने का। देखो इसमें फल आया, भगवान की आत्मा में तो तीर्थंकर प्रकृति का फल आया नहीं, लेकिन बाह्य दृष्टिवान जीव ऐसा मानता है कि देखो अभी सुंदर भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध उदय उदेश का इस आत्मा के साथ है। वितरागता में उदय से कोई लेना देना रहता, पूर्ण वितरागता हो गई, उदय उदय में, और आत्मा आत्मा में लीन रहता है। प्रत्यक्ष तौर से देखो समस्तरण में कैसे विराजमान होते हैं। भले सो इंद्रो ना रतनमय स्वस्ति मनता आवश्यक है नहीं। स्वरूप डूबेला न मन तुझे स्वरूप में लीन हो गया तो देखते भी नहीं। इंद्र इंद्राणी आदि लाखों करोड़ों देव देवियां आती है, इनके ज्ञान में तो सारा विश्व झलकता है लेकिन वो देखते हैं। सारा विश्व में समोषण बाकी रहता है क्या? समोषण में कौन आए कौन नहीं आए सब पता चलता है, लेकिन उनको क्या है, वितरकता में कुछ है? कोई आओ बताओ, कोई सुनो मत सुनो, कोई उल्टा समझो कोई सुल्टा समझो, मित्रा कहने को जाएंगे समोषण में उल्टा समझते हैं। ये अन्य मत कहाँ से चला? आदिनाथ भगवान से तो चला है, 363 अन्य मत चले तो भगवान आदिनाथ की वाणी सुनकर के समझ में फर्क हो गया तो अपने अपने मत में चढ़ गए। भगवान नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी ये गलत फहमी है, तुम गलत समझे हो, यानी मत मत प्रवर्ताओ। और भगवान कहेंगे कौन कहेंगे सदमस्त होंगे, ज्ञानी होंगे, आचार्य होंगे, निषेध करेंगे क्या करेंगे इसके साथ चर्चा होगी समुसरण में और दूसरा मुनि में गलत फहमी होती है, विद्वत्ता में गलत फहमी होती है, सम्यक ज्ञान नहीं है तो अंदर अंदर चर्चा में ये होता है। ज्ञानी है, आचार्य है, मुनि है, को भी तुम्हारी गलती हो रही है, नहीं मैं मानता हूँ नहीं, ये मेरे सब मानते हैं, चलाते हैं फिर मेरे वाले से दुकानदारी चालू हो जाती है। भगवान कुछ नहीं कहते, वैसे ही बैठे रहते, चले जाएंगे सीधा लेने। कौन ज्यादा उपकारी कृपालु देव ने सोच समझ करके बात किया है, क्या सोच समझ करके बात किया है? देखो वितराग है, उनको तो विकल्प आएगा, तेरा व्यक्तिगत विकल्प भगवान को नहीं आएगा। तेरी जिज्ञासा होगी तो तुम्हारे समस्या का उत्तर मिल जाएगा तुमको, लेकिन तुम उल्टा चढ़ जाएगा तो वो कहने को नहीं आएगा कि तुम उल्टा चढ़ गया है, तुम छोड़ो इस बात को। तो छदमस्त ज्ञानी गुरु कहेंगे, इसलिए उनको भगवान से भी ज्यादा उपकारी एक न्याय से माना है, कुछ एक न्याय से जो यथार्थ है। जब ये ज्यादा उपकारी है तो किसकी ज्यादा भक्ति आएगी?
दूसरे आचार्य वगैरह बताते हैं कि तुम्हारा गलती है, वो को ऐसा उसमें वो गलती का समाधान वहाँ नहीं करते हैं, वो उनके तरह से कर लेते हैं। वो गलती बताते हैं, दूसरे बताते हैं कि तुम्हारा गलती है, दूसरे को समस्या में ऐसा समाधान नहीं करते हैं कि वास्तव में मेरा गलती है या नहीं है।
कोई कर लेते हैं कोई नहीं करते हैं, उसमें भी दो प्रकार के जीव होते हैं। जो कर लेते हैं वो सलटते हैं, सलट जाते हैं तो बच जाते हैं, हमेशा ऐसा बनता है कुछ बचते हैं कुछ नहीं बचते हैं, चाहे समोसरण हो चाहे नहीं समोसरण हो, दो योग्यता वाले जीव हमेशा हमेशा होते हैं। नौवें स्वर्ण में सलटने वाले की संख्या ज्यादा होती है और हीन काल में विपरीतता की संख्या, विपरीत समझने वाले की संख्या बढ़ती जाती है। सितंबर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कितना धमाल धाम धम धमाल, मंदिर मंदिर वो क्षेत्र, समय चक्र इसके हाथ में है, था अभी तो नहीं है, था अभी तो गवर्नमेंट का देखा हो गया, लेकिन वो लोग आ गया कि नहीं आ गया, ये होने वाला है, काल अनुसार होगा। जैसा हीन काल है तो ऐसे परिणाम वाले जीव अधिक होंगे, इसका नाम काल है। क्या कहा, शुभाव आते हैं इसलिए, शुभाव आते हैं उसके साथ जिज्ञासु की श्रद्धा ऐसी नहीं हो जाती कि ये शुभाव से मुझे लाभ है, ऐसा वो समझते नहीं, यथार्थ समझ वाले वो बात समझेंगे, ऐसा समझेंगे नहीं। जिज्ञासु की श्रद्धा और रुचि उसमें मिल जाते नहीं, उसके साथ मिल जाते। स्वभाव में श्रद्धा और रुचि का मिलावट नहीं होता, उसकी रुचि अलग रहती है, स्वभाव की रुचि उसको नहीं है, यथार्थता में स्वभाव की रुचि होती नहीं। उसने तो ध्येय नक्की किया है अपना पूर्ण शुद्धता का, तो स्वभाव की रुचि क्यों करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुमुक्षु ही आगे जा करके ज्ञानी होता है। तो कौन सा ऐसा मुमुक्षु है जो आगे बढ़ करके ज्ञानी होएगा, मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लेगा, ऐसा कौन है कि जो ज्ञानी के परिणाम का अनुसरण करने वाले हैं वो। ज्ञानी को ऐसा नहीं होता तो मुमुक्षु को भी ऐसा नहीं होएगा, क्यों होएगा, थोड़ा अनुपात में फर्क रहेगा, अनुपात माने प्रमाण, परसेंटेज में फर्क पड़ेगा, तीव्र मंदता में फर्क पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन अभिप्राय विपरीत हो तो वो तो ज्ञान दशा में आने लायक मुमुक्षु भी नहीं है, अभिप्राय की विपरीतता तो नहीं चले, परिणाम चले, विपरीत परिणाम चले, अभिप्राय की विपरीतता नहीं चले, वो बात। जिज्ञासु को बुद्धिपूर्वक ऐसा निश्चय होता है कि श्री गुरु ने कहा है कि तेरा शुद्धात्मा विकल्प बिना का निर्विकल्प तत्व है। क्या क्या कहते हैं गुरु, तो बहुत सी बातें करते हैं, स्वस्थान का राग द्वेष की भी बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे समर्पण बुद्धि आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर यहाँ वो सब बात नहीं लिया। गुरु ने कहा कि तेरा शुद्धात्मा विकल्प बिना का निर्विकल्प तत्व है, वो बात पर उसका ध्यान गया है, बाकी जानकारी की बहुत सी बातें जान लिया, अब उपादेय जो बात है उस पर उसका ध्यान गया है। अरे मेरा स्वरूप ऐसा बताते हैं, बुद्धिपूर्वक ऐसा निश्चय करता है मेरा स्वरूप निर्विकल्प है, इसलिए मेरी निर्विकल्प शांति मुझे होनी चाहिए, वो स्थिति जहाँ तक आती नहीं है, मुझे उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो मंद कषाय की शांति में रुकता नहीं, रुकेगा भी नहीं, ये बात है। जिज्ञासु को बुद्धिपूर्वक ऐसा निश्चय होता है कि गुरु ने कहा है कि तेरा शुद्धात्मा विकल्प बिना का निर्विकल्प तत्व है। अब पहचान करने वाले को तो लक्षण भी निर्विकल्प चाहिए, जैसा आत्मा निर्विकल्प है ज्ञान स्वाभाविक, ऐसा ज्ञान भी निर्विकल्प चाहिए। तो मोटी समझ में क्या कहता है कि निर्विकल्प ज्ञान तो स्वानुभूति में होता है, सदुपयोग हुए बिना तो निर्विकल्प ज्ञान होता नहीं। हम क्या करें, हमारे पास तो है ही नहीं, विकल्प वाला ज्ञान है, वही साधन हमारा है। विचार करते हैं मन से क्या करें, देख तुम्हारे पास भी निर्विकल्प ज्ञान है कि नहीं
है?
तुम्हारा जो ज्ञान सामान्य है प्रकट, वो निर्विकल्प है, वेदनात्मक है। उसी लक्षण से तुम अपना निर्विकल्प स्वरूप को पहचानो। जाति परक तो ऐसे ही आती है, सैंपल से ही आती है। जाति परक तो सैंपल से ही आती है, देख लो कहीं भी देखो, व्यवहार में भी सैंपल से जाति परक आती है कि नहीं आती है। तो ये सैंपल है तुम्हारी पर्याय में, ये सैंपल है। तुमको पता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन श्री गुरु बताते हैं कि है। तो सिर्फ बौद्धिक निर्णय में वो नहीं रहता क्या? मैंने कहा भी बढ़िया है, वो है वो है कि बौद्धिक निर्णय होता है कि श्री गुरु कहता है कि तुम्हारा शुद्धात्मा निर्विकल्प तत्व है, तो पहचानने के लिए वो अपने ज्ञान में निर्विकल्प ज्ञान को खोजेगा। तो निर्विकल्प ज्ञान सामान्य जो निर्विकल्प है उसको पकड़ने के लिए ज्ञान विशेष में एक उद्देश्य को धारण करना पड़ता है। जैसे हम दाल या सब्जी नमकीन पदार्थ में नमक को पकड़ना चाहते हैं, चखते हैं, सैंपल चखते हैं, पूरा टोपिया को खाने की जरूरत नहीं है, और खाएंगे तो बाबा के कौन क्या हो जाएगा, इनके पुरस्कार किसकी होगी, वो तो सवाल ही नहीं। सैंपल चखते हैं, उसमें एक उद्देश्य धारण करते हैं कि उसमें खारापन का प्रमाण कितना है, कमी वैसे हो तो देख लें, बराबर है तो कोई सवाल नहीं। वो कब पता चलता है, उद्देश्य को धारण करते हैं तब। क्यों? कि वो जो उसमें जो नमक डाला है वो सामान्य रूप हो गया है, खुला नमक नहीं है, सामान्य हो गया है, दूसरे स्वाद, विशेष स्वाद है उसमें, उसमें एक नमक भी है। तो उसको समझने के लिए उद्देश्य धारण करता पकड़ना पड़ता है। वो समय सार 15 गाथा में लिया है दृष्टांत। तो यहाँ पर भी अपने ज्ञान सामान्य को समझने के लिए, क्योंकि तो अभी तक तो ये माना है कि मेरा तो विकल्प वाला ज्ञान है, सदुपयोग मुझे हुआ नहीं, तो निर्विकल्प तत्व का अनुभव मुझे कैसे होगा। तुम्हारे में भी निर्विकल्प ज्ञान मौजूद है, प्रकट है, प्रकट है, मौजूद है, और अनुभव गोचर भी है, क्योंकि वेदनात्मक है। वो कैसा है? वेदनात्मक है। इसलिए तुमको निर्विकल्प स्वरूप कैसा होता है इसकी पहचान आ सकती है। तुम अपने परिणमन में प्रयोग करके देखो। क्या? प्रयोग करके देखो। तो बौद्धिक स्तर पर जिसने निर्णय किया है, तो प्रयोग के स्तर पर उसका निर्णय करने का प्रयास में आएगा, उसको स्वरूप की पहचान होगी, और जिसको स्वरूप की पहचान होगी उसको ही स्वरूप का अनुभव, दूसरे को होने वाला है। वो बात यहाँ से निकलती है। विस्तार से लेंगे, लंबा थोड़ा है।